है 6 अप्रैल दिन गुरुवार। स्वीकार कीजिए मेरा वंदना का नमस्कार। सीरिया में रासायनिक हमले पर अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया। निकी हेली बोली, और कितने बच्चों को मरना होगा, मांगा रूस से जवाब।
इफ रशिया हैज द इन्फ्लुएंस इन सीरिया दैट इट क्लेम्स टू हैव, वी नीड टू सी देम यूज इट।
अलवर में कथित गौरक्षकों के हमले में मारे गए पहलू खां के बेटे ने कुछ यूं बयां किया दर्द।
हमको इमरजेंसी से निकाल कर नीचे डाल दिया, उसके बाद में हमारी मुलाकात मरने के बाद में भी नहीं हुई।
जानेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में किसानों को मिली कर्ज माफी कारगर साबित होगी। सुनवाएंगे दुनिया जहां और आईपीएल से जुड़ी खबरें भी, पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। सीरिया के खान शखौन में रासायनिक हमले के लिए अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने सीरियाई सरकार की कड़ी आलोचना की है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मसले की जांच के लिए एक प्रस्ताव दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली ने भी सीरियाई सरकार की कार्रवाई पर रूस से जवाब मांगा है और कहा है कि रूस को सीरियाई सरकार की कार्रवाइयों पर लगाम लगानी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से वरिष्ठ रणनीतिकार स्टीव बैनन को हटा दिया है। जनवरी में स्टीव बैनन की नियुक्ति पर खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों ने इस परिषद के राजनीतिकरण का डर जताया था। स्टीव बैनन को हटाने पर व्हाइट हाउस ने सफाई दी है कि उन्हें हटाना उनकी डिमोशन नहीं है। व्हाइट हाउस के एक प्रतिनिधि के मुताबिक पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किए गए माइकल फ्लिन पर नजर रखने के लिए ही राष्ट्रीय रक्षा परिषद में स्टीव बैनन को जगह दी गई थी। हालांकि फरवरी में माइकल फ्लिन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद से हटा दिया गया था। म्यांमार के राखिन प्रांत में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के जातीय संहार के लिए सेना की कार्रवाई के आरोप को म्यांमार की नेता आंग सान सू ची ने खारिज कर दिया है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में सू ची ने कहा कि ये जातीय संहार नहीं है, बल्कि रोहिंग्या मुस्लिम और जातीय बर्मीज लोगों के बीच नफरत है जिसका फायदा कुछ कट्टरपंथी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान राखिन प्रांत का दौरा करने के लिए आमंत्रित है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची की पार्टी ने म्यांमार में 2 साल पहले चुनाव जीतकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई है और बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा।
I don't think there's ethnic cleansing going on. I think ethnic cleansing is too strong.
मुझे नहीं लगता कि ये जातीय संहार है। इसे जातीय संहार कहना बहुत ही भारी शब्द होगा। वहाँ बहुत नफरत से भरा हुआ माहौल है और मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहे हैं, और अगर वो अधिकारियों का साथ भी मिल गए हैं तो भी ये आपसी संघर्ष है। तो ये सिर्फ जातीय संघर्ष की बात नहीं है, बल्कि अलग अलग पक्षों के लोग हैं जिनके बीच की दूरी को हम घटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे आंग सान सू ची के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कोलंबिया में अधिकारियों ने कहा है कि मोकोआ शहर में शनिवार को हुए भूस्खलन में कम से कम 290 लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने मोकोआ शहर में बिल्डिंग सेफ्टी के नियमों का पालन और प्राकृतिक आपदा के लिए स्थानीय प्रशासन की तैयारी की जाँच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये जाँच की जा रही है कि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। भूस्खलन में लापता 300 से ज्यादा लोगों की तलाश अब भी जारी है, जबकि शहर में अभी लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं और बिजली और पानी की सप्लाई भी पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है। जर्मनी की सरकार ने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले पोस्ट और गलत खबरों को हटाने में देरी करने पर सोशल मीडिया नेटवर्क पर $5 करोड़ से ज्यादा जुर्माना लगाने के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। इस नए कानून के तहत जर्मनी में आपराधिक सामग्री वाले पोस्ट की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के अंदर उसे हटाना या ब्लॉक करना होगा और दूसरे अपमानजनक पोस्ट को 7 दिन के अंदर हटाना होगा। जर्मनी के न्याय मंत्री हेको मास ने कहा कि नफरत फैलाने वाले पोस्ट को हटाना संभव है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने रसूख का इस्तेमाल नहीं कर रहे।
ट्विटर
सिर्फ 1% और फेसबुक 50% से भी कम सामग्री हटाता है, जबकि यूट्यूब 99% सामग्री हटा देता है। ये थे जर्मनी के न्याय मंत्री हेको मास के शब्द। बीबीसी समाचार।
بی بی سی ہندی سے دن کی پہلی سبھا نمسکار بھارت آپ سن رہے ہیں وندنا کے ساتھ، ریڈیو کے علاوہ بی بی سی ہندی .com پر اور اپنے موبائل فون پر بھی۔ آج کارکرم کی شروعات انتراشٹریہ جگت سے۔ جیسا کہ آپ نے سماچاروں میں بھی سنا، سیریا خبروں میں ہے۔ سیریا میں رسائنک ہتھیاروں کے کارن ہوئی موتوں کو لے کر امریکہ سمیت کئی دیشوں نے روس کی زبردست آلوچنا کی ہے، اس کی بھومکا کی آلوچنا کی ہے۔ ایک اور روس کا کہنا ہے کہ عام ناگرکوں کی موت شاید ودروہیوں کے ہتھیاروں سے ہوئی، جبکہ کئی انیہ دیش یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ نیو یارک میں سنیکت راشٹر سرکشا پریشد کی بیٹھک میں امریکی پرتندھی نکی ہیلی نے روس پر نشانہ سادھا ہے، تو راشٹرپتی ٹرمپ نے بھی دکھ جتایا ہے۔ سرکشا پریشد کی بیٹھک کے پورے بیورے کے ساتھ ہیں ہریتا کانڈپال۔
سنیکت راشٹر میں امریکہ کی راجدوت نکی ہیلی نے سیریائی سرکار پر لگام کسنے میں ناکام رہنے کے لیے روس کی کڑی آلوچنا کی ہے۔ سیریا میں چل رہے گرہ یدھ میں روس سیریا کے راشٹرپتی بشر الاسد کا سہیوگی ہے۔ برٹن میں آدھارت مانیٹرنگ سموہ دا سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق منگلوار کو خان شیخون میں ہوئے رسائنک حملے میں 20 بچے اور 22 ویسکوں کی موت ہو گئی تھی۔ سنیکت راشٹر سرکشا پریشد میں اپنے بھاوک بھاشن میں نکی ہیلی نے سوال کیا،
If Russia has the influence in Syria that it claims to have, we need to see them put an end to these horrific acts.
روس سیریائی کارروائیوں کے بارے میں چنتت ہو، اس سے پہلے کتنے بچوں کو مرنا ہوگا؟ نکی ہیلی کے شبد۔ امریکہ، فرانس اور برٹن نے حملے کی جانچ کی مانگ کرتے ہوئے سنیکت راشٹر سرکشا پریشد میں ایک پرستاو دیا ہے۔ وہیں روس نے رسائنک حملے کو لے کر سیریائی سرکار پر لگے آروپوں کو خارج کیا ہے۔ سنیکت راشٹر میں روس کے راجدوت نے کہا کہ یہ جان لیوا گیس تب لیک ہوئی جب سیریائی ہوائی حملے کے دوران ودروہیوں کے ایک ٹھکانے پر بمباری کی گئی جہاں رسائنک ہتھیار رکھے گئے تھے۔ روس کے ودیش منترالے کی پروکتا ماریا زخاروف نے بھی یوں پلٹوار کیا، بنا یہ سمجھے کہ کیا ہوا ہے، امریکہ، فرانس اور برٹن پوری طرح سے غلط جانکاری سرکشا پریشد میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹی جانکاری وہاں ایک پرستاو کے ذریعے ستھاپت کی جا رہی ہے جو سیریا ویروتھی ہے۔ یہ تھے ماریا زخاروا کے شبد۔ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سیریا میں ہوائی حملے کے دوران جان لیوا گیس سے کئی لوگوں کی موت کو مانوتا کا اپمان بتایا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جارڈن کے کنگ عبداللہ کے ساتھ ایک ساجھا پریس وارتا میں ٹرمپ نے اس حملے کے لیے سیریا کے راشٹرپتی بشر الاسد کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ سیریا میں مہیلاؤں، بچوں، چھوٹے پیارے ششوؤں سمیت نردوش لوگوں پر کیا گیا رسائنک حملہ بھیاوہ تھا اور ان کی موتیں مانوتا کا اپمان ہے۔ امریکہ اس بھینکر حملے کی نندا کرنے کے لیے اپنے سہیوگیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے شبد۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس حملے کے بعد اسد کے بارے میں ان کی سوچ میں کافی بدلاؤ آیا ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ پرشاسن نے سنکیت دیے تھے کہ اسد کو ستہ سے ہٹانا امریکہ کی پراتھمکتا نہیں ہوگی، جیسے کہ کبھی پورو راشٹرپتی باراک اوباما کی نیتی میں اسد کو ہٹانا شامل تھا۔
تو سیریا کو لے کر امریکہ روس کے خلاف ہوا لام بند۔
75 ورشوں سے آپ کے ساتھ
بی بی سی ہندی ریڈیو،
سنیے اپنے موبائل پر
اور آن لائن بھی۔
اب کارکرم میں کرتے ہیں بھارت کا رخ۔ راجستھان کے الور ضلع کی وہ خبر جو دو دن سے سرخیوں میں ہے۔ دلی سے کوئی 150 کلومیٹر دور الور راجاؤں رجواڑوں کی کبھی نگری رہی۔ یہاں کا سنگ مرمر مشہور ہوا کرتا تھا، تو اس کے کلاکند کے چرچے آج بھی ہیں۔ یہاں کے بنے بھانو گڑھ کے قلعے کو آج بھی وہاں لوگ جانے سے ڈرتے ہیں شام ڈھل جائے تو، لیکن ان دنوں یہاں کے بہرور علاقے میں حال یہ ہے کہ دن میں بھی خوف کا سایہ ہے۔ منگلوار کو کتھت گورکشکوں کے حملے میں یہاں پہلو خان نام کے ویکتی کی موت ہو گئی تھی۔ بی بی سی سنواداتا نتن شریواستو نے پہلو خان کے بیٹے ارشاد سے بات کی جو حملے کے وقت وہیں موجود تھے۔
بہرور مین پل کو پاس کرتے ہی 8-7 آدمی 2 موٹر سائیکلوں پہ، بائیکوں پہ ہمارے پاچھے آئے۔ اس نے ہم سے بولا کہ گاڑی روک لو، کہ اس نے ہماری پرچی نہیں دیکھی، ہاتھ میں سے لے کر پھاڑ کر پھینک دی۔ ہم کو اتنا مارا सब लोगों को इतना मारा कि हम बेसुध रोड पर गिर दिए, ताकि हमको कोई मालूम नहीं रहा कि बाद में कितना आदमी यहाँ पर है कितना नहीं है। इतना हमको सुना था कि वो बोल रहे थे कि इसमें तेल छिड़क कर आग लगा दो सब आदमियों में। 15-20 मिनट बाद में ही पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर उन लोगों को धमकाया हमको जी। फिर प्रशासन ने एम्बुलेंस बुलाकर हमको कैलाश हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। दाखिल होने के बाद में हमको तीसरे दिन मेरा पिताजी पहलखाने दम तोड़ दिया। वहां अस्पताल में हम मिल भी नहीं पाए।
अस्पताल में आपके अपने पिताजी से मुलाकात नहीं हुई, आप कहाँ थे, पिताजी कहाँ थे?
बस एक बार हुई थी जब यहाँ से गए थे ने जी, तो वहाँ हमें उसको भी इमरजेंसी में डाल दिया और हमको भी इमरजेंसी में डाल दिया। दूसरे दिन हमको इमरजेंसी से निकाल कर नीचे डाल दिया। उसके बाद में हमारी मुलाकात मरने के बाद में भी नहीं हुई। मरने के बाद में मेरे पिता को प्रशासन सरकारी हॉस्पिटल ले गई। वहाँ ले जाकर उसने सरकारी अस्पताल में रख दिया मेरे पापा को, और हमको वहाँ से अस्पताल से निकाल कर चारों को थाने में डाल दिया। लेकिन उसमें प्रशासन की कोई बात नहीं थी। प्रशासन ने अपना सा पूरा कोशिश किया, पर क्या करे जी, उसकी पब्लिक के आगे पार नहीं।
फादर की क्या एज थी, आपकी उम्र क्या थी?
उनकी जी करीबन 50-55 साल के करीब उम्र थी जी। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वह बढ़िया था, तंदुरुस्त अच्छा था।
और माता जी आपकी है घर में?
हाँ जी, माता जी मेरी है घर में। कोई बात नहीं कर पाएगी जी, वो उसको कोई होश नहीं है। मेरा अब्बा की माँ भी जिंदा है जी, अभी अंगूरी जी जमींदारा करते हैं, पशु पालते हैं, और कोई काम नहीं है जी। नहीं कोई बिजनेस है, नहीं कोई ड्यूटी मैन है, नहीं कुछ, अपने बस भैंस काट पालते हैं, धन रखते हैं और अपना टाइम पास करते हैं।
तो ये थे पहलू खां के बेटे इरशाद, जिनसे बात की नितिन श्रीवास्तव ने। और नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, बहरोड इलाके के नज़दीक ही वो अभी फिलहाल रुके हुए हैं। नितिन ये बताएं सबसे पहले कि देर शाम या रात में आपकी बात हुई हो, पुलिस का अभी क्या कहना है?
वंदना, पुलिस से हमारी रात को बात हुई है तकरीबन 12 बजे के आसपास। तो जो बहरोड के यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, उनके उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मामले में 3 गिरफ्तारियां की हैं। तीनों के नाम उन्होंने बताए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस और लोगों को की तलाश में है। उनका कहना है कि जो एक कथित तौर पर वायरल हो गया है वीडियो इस घटना का, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोगों के साथ इस सिलसिले में मारपीट हो रही है, सड़कों पर उनको खींच कर मारा गया है, पुलिस के मुताबिक वो इसकी शिनाख्त करने में लगे हैं कि उन लोगों के में और कौन लोग थे, और वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई में पूरी तरीके से लगे हुए हैं
जी। और वहाँ वो इलाका आप गए, आप लोगों से मिले, तो वहाँ किस तरह का अभी माहौल है?
वंदना, मेवात में काफी दहशत का माहौल है। जयसिंहपुर इलाका जहाँ पर हम थे ये, और उसके अलावा भी जो जो जो, जो तमाम इलाके हैं नूह में, वहाँ पर लोग काफी डरे हुए हैं। और ज्यादातर लोगों की चिंता ये है कि अगर ये लोग जो इरशाद और अजमत वगैरह हैं, अगर ये लोग कथित तौर पर कागजों के साथ गाय लेकर आ रहे थे, उनके साथ ये हुआ है, तो लोग उससे बहुत खौफजदा है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान के बाद अब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला कर चुकी है। इस फैसले को लेकर किसानों की, विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। हमने किसानों से कुछ बात करने की कोशिश की, मथुरा, बांदा, हाथरस जैसे इलाकों से, कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस कर्ज माफी को लेकर।
जो बैंक में समय से अपना कर्जा चुकाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, लेकिन जो किसान वाकई में गरीब हैं, जिनके पास बैंक का कर्जा चुकाने के लिए सालों से पैसा नहीं था, वो बैंक के डिफॉल्टर थे, उनको अपनी कृषि को, अपनी खेती को और अपने जीवन को संवारने में इस निर्णय से काफी राहत मिलेगी।
कुछ लोग काफी कर्जे में दबे हुए थे, वो बहुत अच्छा निर्णय है ये। 25,000 रुपए का लोन था मेरे ऊपर, तो हो सकता है वो माफी में आ जाए।
तो ये सुनिए आपने कुछ किसानों की बात। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब दूसरे प्रदेशों में भी किसानों के कर्ज माफ करने की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना ने ये मांग उठाई है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस भी ऐसी ही मांग कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर जानकारी भी दी है कि उन्होंने वित्त सचिव से उत्तर प्रदेश के मॉडल का अध्ययन करने के लिए कह दिया है। लेकिन क्या कर्ज माफी से किसानों को वाकई फायदा होगा? हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा से बात कर यही सवाल पूछा।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ये कदम लिया है बहुत ही साहस का कदम है। जिस समय सारा मेनलाइन पॉलिसी प्लानिंग है या इकोनॉमिक थिंकिंग है वो ये है कि किसानों को कर्जा नहीं माफ करना चाहिए, इससे क्रेडिट डिसिप्लिन खराब होता है, और उस समय पे ये कदम लेना जानते हुए कि इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी प्लानर इसका साथ नहीं देंगे, फिर भी ये कदम लिया गया, मुझे लगता कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि बाकी प्रदेशों में भी इसकी बहुत जरूरत है।
जिस स्तर के ऋण माफ किए जा रहे हैं, क्या उससे किसानों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा?
कि इस समय जबकि देश में किसान जो है 12,60,000 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे हैं, उसमें मात्र 36,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ होना, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है इट्स नॉट इवन ए ड्रॉप इन द ओशन। लेकिन मेरा ये मानना है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में जहां की 2 करोड़ किसान कह लीजिए जो छोटे और मझले हैं, अगर उनको राहत मिलती है, थोड़ी भी राहत मिलती है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा उसमें एक आश्रय उनको मिलता है। ये तो एक इमीडिएट राहत तो मिल गई, लेकिन इसका मतलब तभी होगा कि हम आगे से ऐसी नीतियां लेके आए या ऐसे स्टेप्स उठाएं कि दोबारा किसान के ऊपर कर्जा ना चढ़ पाए।
जी, सवाल दरअसल यही है, सरकार ने ये कदम तो उठाया है लेकिन दोबारा कर्ज उन पर ना हो, क्या इस तरह के कोई संकेत दिख रहे हैं आपको?
जहां तक कि आप सरकार की बात करें, देश के बारे में बात करें, वहां पर तो ऐसा कोई संकेत नजर नहीं आता है। लेकिन जाने अनजाने में शायद उत्तर प्रदेश में एक जो स्टेप साथ में लिया गया है कि गेहूं की जो प्रोक्योरमेंट है वो इस साल 80 लाख टन की करने की बात जो कही गई टारगेट रखा गया है, मुझे लगता है कि वो अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टेप है। क्योंकि ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा है स्टेट्स को कि आप प्रोक्योरमेंट को बंद करिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी खत्म करिए, उस समय पर एक स्टेट ये कदम लेती है, मेरे मानने से बहुत अगर उसका उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि पहले अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो मात्र 8 लाख टन पिछले साल जो है प्रोक्योरमेंट हुई थी, यानी किसानों को उनकी पैदावार के ऊपर दाम नहीं मिलता।
बहुत से लोग इस फैसले को वोटरों की वाहवाही लेने का और सुर्खियां गढ़ने का फैसला बता रहे हैं।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये अगर इलेक्शन का ये कमिटमेंट नहीं होती तो ये शायद उत्तर प्रदेश में नहीं होता, एक बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं। अब देखिए, जब कॉरपोरेट के लोन माफ करने होते हैं तो देश में एक आवाज भी नहीं उठती कि साहब ये गलत हो रहा है। पिछले 12 साल में 48 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कंसेशन दिए गए हैं कॉरपोरेट्स को।
कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जो मानते हैं कि यह कर्ज माफी का फैसला एक तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अब नजर डाल लेते हैं आज के अखबारों पर। हरिता एकदम स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत सारे अखबार एक तरह हर तरफ बिखरे हुए हैं।
जी, सारे अखबार बिखरे हुए हैं। और सबसे पहले बात करती हूँ बैलेट पेपर की, जिसकी आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं सभी विपक्षी दल। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि कल राज्यसभा में इसे लेकर जो है विपक्ष ने हंगामा किया है। विपक्ष का आरोप है कि ईपीएम में गड़बड़ी की गई है और सरकार ने आरोप से इनकार किया है। सरकार ने कहा है कि अगर विपक्ष को शिकायत है तो चुनाव आयोग के पास जाएं और संसद का समय बर्बाद ना करें। दूसरी खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि खाने की पसंद में, मतलब क्या खाना चाहते हैं और क्या कौन सी खाने की सामग्री बेचना चाहते हैं, ये जीवन के अधिकार का हिस्सा है, दोनों जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है।
जो बूचड़ खाने बंद होने की बात है उससे जुड़ी हुई बात
जी। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 10 दिन दिए हैं कि गैर कानूनी बूचड़ खानों और मीट विक्रेताओं को लेकर जो कुछ चल रहा है कार्रवाई, उसमें एक योजना पेश करें और 10 दिन के अंदर ये जो है सारी योजना पेश करें ताकि लोगों की परेशानी कम हो जाए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर दी है कि भारत प्रशासित कश्मीर में कश्मीर क्रिकेट क्लब के सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है, क्योंकि एक वीडियो सामने आया था जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी के रंग के कपड़े पूरी क्रिकेट टीम ने पहने हैं।
ये जो भारत प्रशासित कश्मीर के
जी जी बिल्कुल जी, ये क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी हैं। 11 खिलाड़ियों का ये वीडियो सामने आया, जिसमें मैच शुरू होने से पहले कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का राष्ट्रगान भी गाया लगाया गया है और इसे लेकर वहाँ पूछताछ हुई है और माहौल तनावपूर्ण है और सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। एक और खबर सारे अखबारों में छाई है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने इस पर लिखा है कि ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित कर तीन तलाक का विरोध किया है, गौवध पर प्रतिबंध का समर्थन किया है और राम मंदिर के मुद्दे पर जो है उन्होंने कहा है कि इसे बातचीत से
और तस्वीर के साथ छापा है। बिल्कुल, मैं देख रही हूं,
बिल्कुल तस्वीर के साथ छापा
जी है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिता समीक्षा करने के लिए। और अब वक्त है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहां का। लातिन अमेरिका के देश इक्वेडोर में एक दशक से कायम साम्यवादी दल ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में बाजी मार ली है और विपक्षी दल चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत कर रहे हैं। चुनाव में जीत का फर्क मामूली है, लेकिन क्या वजह है कि दशक भर से देश की सत्ता पर काबिज दल एक बार फिर जीत गए हैं? निखिल रंजन की विशेष पेशकश।
दुनिया जहान। दक्षिण अमेरिका में दक्षिणपंथी रूढ़िवादी सरकारों के बनने का जो सिलसिला अर्जेंटीना से शुरू होकर पेरू और ब्राजील तक पहुंचा, उसे इक्वेडोर में उम्मीदों के अनुरूप सफलता नहीं मिल सकी। बहुत जोर लगाने के बाद भी वहां दशक भर से कायम साम्यवादी दल के उम्मीदवार को विरोधी राष्ट्रपति चुनाव में नहीं हरा सके। 51% से कुछ ज्यादा वोट हासिल करने वाले लेनिन मारिनो अब इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति होंगे। मारिनो की जीत से सबसे ज्यादा परेशान है उनके प्रतिद्वंदी गिलेमो लासो, जो चुनावी सर्वेक्षणों में लगातार आगे रहने के बाद भी नतीजों में पिछड़ गए। बैंकर से राजनेता बने लासो ने अपनी जीत पक्की मान ली थी और अब जब नतीजे उनकी उम्मीदों को तोड़ गए हैं तो उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत कर आंदोलन शुरू कर दिया है। लासो भले ही अपनी हार नहीं हजम कर पा रहे हों, लेकिन लंबे समय से इक्वेडोर पर नजर रख रहे जानकार इस नतीजे को चौंकाऊ नहीं मानते। लातिन अमेरिका के 7 देशों में राजनयिक रह चुके दीपक भोजवानी ने कई बार इक्वेडोर का दौरा किया है।
मुझे तो हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि जो पहला राउंड हुआ था फरवरी में, उसमें मोरेनो आगे कुछ 10-12 पॉइंट से थे, लेकिन उनको 50% नहीं मिलने की वजह से वो मतलब सेकेंड राउंड खोना पड़ा उनका। तो सेकेंड राउंड अब जो जाके हुआ है उसमें 2 पॉइंट का फर्क है। लगता ऐसे है कि बहुत क्लोज रिजल्ट है, लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि लेनिन मोरेनो जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट थे पहले 3-4 साल पहले तक अंडर राफाइल कोरेया जो प्रेसिडेंट थे और जो काफी मशहूर माने जाते थे, जो जिन्होंने खुद ही तय किया कि मैं आगे चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं। वहां पे काफी तनाव है और एजिटेशन हो रहा है कि वोटें मतलब छीन लिए गए हैं या कोई बैलेट बॉक्स स्टफिंग हुआ था और कोई गड़बड़ हुआ है, इसलिए काफी मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं।
दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर मौजूद इक्वेडोर के भूभाग में आंदियन हाइलैंड्स, अमेजन के जंगल और वन्य जीवों से भरपूर गालापागोस के द्वीप शामिल हैं। पारंपरिक रूप से खेती करने वाले देश ने 1960 के दशक में आगे बढ़ने के लिए कारोबार और उद्योगों के विकास का रास्ता चुना और तेल की खोज ने उसके सपनों को खूब हवा दी। तेल और गैस यहाँ की जीवन धारा बन गए, हालांकि इसके साथ ही भ्रष्टाचार और उन दूसरी बुराइयों ने भी यहाँ जड़ जमा लिया, जिससे लातिन अमरीकी देश जूझते रहे हैं।
इक्वाडोर जो है उसमें गरीबी इसलिए है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिजिनस लोग हैं, जिनके पास इतनी एजुकेशन ऊंची नहीं है। उनके लिए राफाइल कोरेया और अभी लेनिन मोरेनो, उनकी जहन उन पर होगी कि भाई देखो इनको पहले कैसे स्टेबलाइज किया जाए, कैसे उनको मौके दिए जाएं और किस तरह से उनकी जरूरियां पहले पूरी कर लें, उसके बाद हम देखेंगे। उसके अलावा ये भी है कि बहुत सारा करप्शन, बहुत सारा भ्रष्टाचार रहा है इस मुल्क में खास तौर पे। तो इन्होंने आके काफी डिस्ट्रीब्यूशन की है, मतलब इकोनॉमिक्स उसका बदल दिया इस तरह से कि वो ज्यादा सोशलिस्ट किया है। अब उसका रिएक्शन जो था ये था कि भाई देखो बिजनेस की तरफ से किसी ने देखा ही नहीं है और बिजनेस बहुत ही कमजोर हो गया उसके बाद, बिजनेस सेक्टर जो है।
2007 में आई साम्यवादी सरकार ने इन बुराइयों पर तो काबू कर लिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कारणों से जो नए हालात उभरे उसने लोगों को उससे थोड़ा दूर भी किया है। इसके अलावा औद्योगिक ढांचा इतना मजबूत नहीं है कि वो नई चुनौतियों का सामना कर सके। तेल की गिरती कीमतें अर्थव्यवस्था की रफ्तार रोक रही हैं और बेरोजगारों की तादाद दिनों दिन बढ़ रही है। ऐसे में दक्षिणपंथी पार्टी ने स्थिति को सुधारने और नौकरियां पैदा करने का भरोसा दिया। तो क्या इस चुनावी हार से दक्षिणपंथी मुहिम कमजोर पड़ेगी?
मुझे नहीं लग रहा कि झटका ज्यादा लगा है। ये जो कंजर्वेटिव पार्टी वाले हैं कह रहे हैं कि देखो ये सब ठीक है, आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन तो किया है, लेकिन अब तो तेल के दाम गिरे हैं, आपके पास धन है ही नहीं हाथ में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप हमें मौका दो, बिजनेस को मौका दो, हम आगे बढ़ें और हम रोजगारी की प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन करवा लेंगे, हम टैक्सेस भी बढ़ाएंगे, ये वो सब कुछ करेंगे। लेकिन ये डिबेट तो जो है चलते आ रहा है और बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो फंडामेंटल बातें हैं कि ये इकोनॉमीज जो है इन मुल्कों की, ये कभी कभी प्रोडक्ट्स पे, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, यहाँ इस हद तक कि अगर रॉ मटेरियल के दाम गिर गए या तो बाजार ऐसा पलट गया जैसे कि चीन में डिमांड घट गया या हिंदुस्तान में या यूएस में या यूरोप में डिमांड घट गया इनके इनके प्रोडक्ट्स के लिए, तो बहुत ही धक्का लगता है इनको। तो इस वजह से उनको इनके डिबेट हमेशा लेफ्ट राइट के डिबेट बहुत ही जबरदस्त होते हैं।
लंबे समय तक स्पेन का उपनिवेश रहा इक्वेडोर अब चीन के निवेश में आकंठ डूबा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में करीब 25% भागीदारी चीनी कंपनियों की है और जानकार मानते हैं कि साम्यवादी सरकार की जीत के पीछे ये भी एक वजह हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर अब्दुल नाफे,
इक्वाडोर एक ऑयल इकोनॉमी है तो वहाँ राज्य का काफी कंट्रोल है, ऑनरशिप है ऑयल को लेकर के, क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है वहाँ ऑयल के अंदर, एनर्जी सेक्टर में, पावर सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तकरीबन 25% इक्वाडोर की जीडीपी है वो चाइनीज कर्जे के अंदर है। ये सारी चीजें ना स्टेट मोबिलाइजेशन के थ्रू चलेंगी, इकोनॉमिक जो इश्यूज है वहाँ उन पर चाइना का काफी इस वक्त कंट्रोल है, दबाव नजर आता है।
वैसे मारिनो और निवर्तमान राष्ट्रपति रफाइल कोरिया का करिश्मा भी कम नहीं है। अब तक सरकार चलाते आए कोरिया साम्यवादी तो हैं लेकिन कट्टर नहीं, और उन्होंने देश में निजी कारोबार को भी फलने फूलने का मौका दिया है। दूसरी तरफ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे मारिनो के लिए लोगों के मन में सहानुभूति भी है। मारिनो और लासो के बीच हार जीत का फासला ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस जीत से एक और शख्स जिसकी जिंदगी पर असर पड़ेगा वो हैं विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज। लंदन की इक्वेडोर एम्बेसी में रह रहे असांज को लासो ने सत्ता में आने के बाद वहां से हटाने की बात कही थी। अब असांज ने पूछा है कि इस हार के बाद लासो कहां जाएंगे। निखिल रंजन, बीबीसी दिल्ली।
तो इक्वेडोर पर आपको कैसी लगी निखिल रंजन की ये पेशकश, चिट्ठी हो या ईमेल हो ज़रूर हमें लिखिएगा। और अब बारी है खेल समाचारों की, और सीज़न शुरू हो गया है आईपीएल का, 10वां सीज़न और पहला मैच था, और मानसी हमारे साथ मौजूद हैं। मानसी बताइए कैसा रहा कल का मैच, देर रात तक चला?
कल जैसा आपने कहा बुधवार को आईपीएल के 10वें सीज़न का आगाज़ हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में सचिन गांगुली और सहवाग जैसे खिलाड़ियों को गोल्डन बैट दिया गया। पहला मैच था पिछली बार की चैंपियन सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच, जिसे हैदराबाद ने 35 रनों से जीत लिया। हैदराबाद की टीम को शिखर धवन और हेनरी केज ने सधी हुई शुरुआत दिलाई। हेनरी केज ने अर्धशतक जड़ा, उसके बाद युवराज ने ताबड़तोड़ 62 रन बनाए। पूरी टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 207 का स्कोर खड़ा किया,
लेकिन बेंगलोर की टीम बहुत अच्छा नहीं कर पाई,
चुनौती पार नहीं कर पाई। टीम 19 ओवर 4 गेंदों में 172 रन ही बना पाई, और हैदराबाद की ओर से आशीष नेहरा ने 2 विकेट लिए और आईपीएल में 100 विकेट भी पूरे किए। आज मैच होगा पुणे और मुंबई के बीच।
जी बिल्कुल, और नेहरा के मतलब उनके लिए बड़ी उपलब्धि है जिनको लोग नेहरा जी बोलते हैं। और अभी मैं सोशल मीडिया देख रही हूँ, ट्विटर, तो जो सारे टॉप ट्रेंड्स हैं वो क्रिकेट से लेकर ही हैं, युवराज को लेकर है, जो हैदराबाद की टीम है उसको लेकर है। तो कुल मिला के अच्छा मुकाबला रहा और आज दूसरा मुकाबला होगा। और खेल की खबरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मानसी। और अब खेल की खबरें हो गई, प्रेस रिव्यू हो गया, अब बारी आ चली है एक बार फिर मुख्य समाचारों की।
बीबीसी समाचार। सीरिया के खान शखौन में रासायनिक हमले के लिए अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव दिया है। म्यांमार के राखिन प्रांत में अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के जातीय संहार के लिए सेना की कार्रवाई के आरोप को म्यांमार के नेता आंग सान सू की ने खारिज किया। कोलंबिया की सरकार ने मोकोआ शहर में शनिवार को हुए भूस्खलन की जांच के आदेश दिए हैं। जर्मनी की सरकार ने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले पोस्ट और गलत खबरों को हटाने में देरी करने पर सोशल मीडिया नेटवर्क पर $5 करोड़ से ज्यादा जुर्माना लगाने के प्रस्ताव को पारित किया। बीबीसी समाचार।
तो आज का कार्यक्रम बस इतना ही। तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। हमारा अगला प्रसारण दिन भर शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए हम सबको अनुमति दीजिए। नमस्कार।